कृष्णा कृष्णा प्रेम है, हमारा पोतना भी नहीं, एक हिरणी को कृष्ण में जितना प्रेम है, राधा जी का तीन जो उतना प्रेम हमारे अंदर है। हिरणी बिना किसी बाधा के, परवाह किए बिना संसार के, किसी के भी पति का भी परवाह नहीं कर सके, एकदम कृष्ण के पास में आकर के उनके मुख के तरफ में निहारती है अपलक, जिसका नेत्र इतना चंचल है हिरणी का, किंतु अपलक उनकी दृष्टि एकदम निकट चली जाती है। और हम ऐसी हैं कि अपने पति की परवाह करते हैं, जाति का समाज का, और उनके पास में आ नहीं सकती, तो इसलिए हमारे अंदर में कुछ प्रेम की एकदम तनिक एक बिंदु, इसलिए वहां पर नृसिंह की उपासना का तात्पर्य नृसिंह देव के शरण मुहारा करके कृष्ण की उपासना कर रहे हैं, गौरचंद्र की उपासना कर रहे हैं।
और अगर कोई साधक नित्यानंद प्रभु जी के उसमें रहे तो
कोई हर्ज नहीं, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सब एक ही है।
नृसिंह देव जी और नित्यानंद प्रभु जी क्या वैशिष्ट है?
नृसिंह देव बलदेव प्रभु जी के नित्यानंद प्रभु के अंश के अंश के अंश के अंश है नृसिंह देव। बलदेव प्रभु अपने एक अंश से नृसिंह देव और वो भक्तों की रक्षा करते हैं।
तो गौड़ीय परंपरा वाले में अगर नित्यानंद प्रभु की तरफ ज्यादा हो करें तो
कोई हर्ज नहीं, तो एक ही चीज
बड़ा
था। अभी तुमको भेद मालूम हो रहा है किंतु उस समय में भेद नहीं मालूम हो रहा है। नित्यानंद प्रभु जी सब प्रकार से महाप्रभु जी की सेवा करते हैं, इसलिए नित्यानंद प्रभु की सेवा करने से नित्यानंद प्रभु जिसकी जैसी रुचि है उसी तरह से उसको कृष्ण के चरण में लगा दें। और अभी मालूम होता है कि वो बड़े भाई हैं, वो विरोध है, उनमें रस नहीं है, ऐसा मालूम, ऐसा नहीं। महाप्रभु जी में नित्यानंद में ये कोई अंतर नहीं, एक ही तत्व है, नाम भेद है, स्वरूप भेद है।
श्रील प्रभुपाद जी ने एक जगह ये लिखा कि चार रसों के गुरु नित्यानंद प्रभु हैं और जो उसके हैं ऐसी चैतन्य महाप्रभु या स्वरूप दामोदर,
ये कहने के लिए तो लिखा गया है, सिद्धांत तो ठीक है, किंतु जब वही अनंग मंजरी हो जाते हैं तब फिर पांचों रसों के वही ये इसे से समझो। रघुनाथ के ऊपर में, रघुनाथ दास जी के ऊपर में नित्यानंद प्रभु जी की कृपा हुई और कहा उनको पहुंचा दिया, कहाँ पहुंचाया? महाप्रभु के पास नहीं, महाप्रभु के पास तो पहुंचाया, किंतु महाप्रभु जी क्या है, राधा और कृष्ण के मिलित तनु है, उनकी सेवा प्रदान कर दी, राधा और कृष्ण की जुगल सेवा को प्रदान कर दिया। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए जिसे नित्यानंद प्रभु नहीं करे। विषय छड़िया कभी शुद्ध में मौन कभी अमी हे रवि वृंदावन, उसके ऊपर में कहा नित्यानंद की
खबर नेताई चंद्र
करुणा हो
संसार
और उन्हीं की कृपा से रूप सनातन की जब हमारे ऊपर में कृपा होगी तो फिर वृंदावन को मैं समझिए वृंदावन क्या है और जुगल क्या है चीज है ये समझिए। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु जी की कृपा से ही वृंदावन में आए। उन्होंने लिखा है नित्यानंद के प्रभु जी की कृपा से मैंने वृंदावन को प्राप्त किया, उन्हीं की कृपा से हमने राधा कृष्ण राधा गोविंद गोपीनाथ जी का मैंने दर्शन पाया, उन्हीं की कृपा से हम पर रूप सनातन की कृपा हुई, रूप रघुनाथ जी की, उन्हीं की कृपा से जो कुछ मैं लिख रहा हूँ उन्हीं की कृपा। उन्होंने चैतन्य चैतन्य लिखा क्या है, जुगल के अतिरिक्त जुगल प्रेम है।
तो कृष्ण की लीलाओं का प्रकाश माने जाते हैं, इसलिए वो माधुरी लीला का प्रकाश भी वही
कर देते है उनमें,
और जिस भाव वाला जो जीव होगा उसको उसी तरह के गुरु के साथ संपर्क कराने में भी, क्योंकि मूल गुरु
वही करता है, वही प्रेरणा देंगे, जबकि शास्त्र से प्रेरणा देंगे। अब नित्यानंद प्रभु शास्त्र भक्ति के आचार्य बनकर
वही कृपा करेंगे तो शांत रस भी होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो कृपा करेंगे तो सख्य रस होगा, उसमें कृष्ण से सख्य भाव रखकर वात्सल्य रूप में, वो वात्सल्य रूप से कृपा करते हुए जसोदा और नंद बाबा के माध्यम से, ये नंद जसोदा बलदेव जी से ही उनका प्रकट है संधिनी से, और उन्हीं की कृपा होगी तभी से अलग तत्व नहीं। आज वो नहीं आए विनोद बिहारी जी, मैंने वो आप ही की तरफ है ना, आप ही के पास से उनका घर है।
लगा ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो भगवान राम के विरह में दशरथ जी के प्राण एकदम से निकल गए थे, जबकि नंद बाबा मतलब गोपी इनमें से किसी के प्राण नहीं तर गए। तो ऐसे अगर ऊपर की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि उनकी भक्ति ज्यादा प्रकार की, जो उनके प्राण भी नहीं रुके उनके विरह में।
किंतु ये विचार करो, नंद बाबा सोच रहे हैं कि यदि मैं मर जाऊंगा तो कृष्ण एक सेकंड जीवित नहीं रह सकेगा, इसलिए प्राण छोड़ना ठीक नहीं, इसे कृष्ण को कष्ट होगा, इसलिए मैं जितना भी कष्ट होगा मैं इसको सहूंगा, कृष्ण के लिए सहूंगा। और जो राम वो दशरथ जी नहीं सह सके, इसलिए उनसे ये श्रेष्ठ है।
दशरथ जी का अपना जो शरीर है वो नित्य स्वरूप शरीर नहीं है, नंद जी का तो अपना
नहीं, उनका भी नित्य ही है, वो इस प्रकार का दिखलाया अभिनय करके, क्योंकि रामचंद्र जी जब लंका से लौट रहे थे सीता जी का प्रत्यय किया तो दशरथ जी वहां पर आए और उनको समझाए जी नहीं ये पवित्र है इसको ग्रहण करो, इसलिए वो मरे नहीं थे, केवल वो माया की क्रिया दिखला दिया जी वो मर गए, मरे नहीं। रामचंद्र जी का किसी भौतिक लोगों से संबंध नहीं होता,
सभी के जो स्वरूप है वो
किन में विशेषकर के माता पिता यदि मर गए हो तो होते तो कौशल्या में, कौशल्या और दशरथ
जो कहीं
ये नंद और इसमें नंद बाबा और यशोदा में देवी और वसुदेव में नहीं प्रवेश करते, ये सखी माता और जगन्नाथ जी हैं उनमें देवकी वसुदेव नंद बाबा यशोदा कश्यप अदिति सब उसमें प्रवेश करते, सब उसमें। तो ये जब मर ही गए तो उसमें प्रवेश क्या हो, ये सब नित्य लीला वाले, जैसे अभी द्वारका में वो स्थान दिखलाते हैं ब्राह्मण लोग और ये सब वहाँ के लोग, ये कृष्ण यहीं पर मर गए थे, यहाँ पर उनकी अंत्येष्टि और ये अग्नि संस्कार हुआ, ये भी दिखलाते हैं।
भागवत तो इसको नहीं दिखलाती,
वो शुद्ध ग्रंथ है, तो मूर्खों के लिए है, जड़वादियों के
लिए,
धारणा नहीं कर सकते ये किनमें चीज क्या है।
महाराज जी एक बात बताइए, छोटे से बालक के रूप में नारद जी ने चार मास तक संतों के साथ संग किया और जाते समय उन्होंने कृपा की उनको, उन्होंने नारद जी को दीक्षा दी, मंत्र दिया, और नारद जी उसी भाव उसी मंत्र के साथ अपना भजन करते रहे और उस शरीर में, फिर उसके बाद जब दूसरे शरीर में आए तो उन्हें नारद जी का रूप धारण किया, उसमें फिर ब्रह्मा जी को गुरु बताया गया,
वो जब हरसा नवीन को कहो ना एक गोली खांसी
किचन का दरवाजा बंद कर दो,
वो साथ कुछ आ रहा है
तड़के की आ रही है ना,
किचन का दरवाजा बंद कर,
इसीलिए खांसी कहीं है जरूर।
सब्जी
के ही आ रहे
तेल का, जो तेल का कुछ
छौंक सा लग रहा है, छौंक का है,
छौंक ही गई है।
થોડી દેર પહેલે લગાવવા છો
તમારે સબ્જી કરશો નથી નવીન જી ને આજ ખુબ કડા ઠોંક દીયા
મેં તો થા આપકે કમરે મેં તો ઋષિ તો ગયા હી નહીં અભી
તો કહાં હો રહા હૈ આપ બોલીએ
અચ્છા મહારાજ ફિર જબ ઉન્હોને દૂસરે જન્મ મેં હોય તો નારદ જી કે રૂપ મેં લિયા શરીર અબ વો બ્રહ્મા જી કે શિષ્ય કહેલાય મૂળતઃ તો ઉન્હોને ક્યા કહેતે હૈ જો
ફિર સે જરા બતાએ હમ ધ્યાન નહીં દિયા
અપને પૂર્વ જન્મ મેં ઉન્હોને જો આપને બતાયા થા ચાર કુમાર જન આયે થે ઉનસે ઉન્હોને દીક્ષા દિયા યા મંત્ર જો મહાત્મા ચતુર્માસી મેં આયે ઉનસે ઉન્હોને મંત્ર દે કે ભજન કિયા और वहाँ पे उन्होंने भगवान के दर्शन किए फिर उसी थोड़ी सी देर के लिए और उसी भाव में वो वहीं रहे उसी शरीर में फिर नेक्स्ट लाइफ में वो ब्रह्मा जी के पुत्र बन के आए और दिव्य रूप दिव्य शरीर को प्राप्त हुए
तो अब हमने ऐसा नहीं था कंफ्यूजन हो गया पहले वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे पहले जन्म में वैसे इनको समझ लीजिए कि वो नित्य ही कृष्ण के परिकर हैं
कृष्ण के परिकर हैं
लीला के परिकर हैं सब समय बद्ध जीव नहीं जैसे कृष्ण नित्य अपने स्वरूप में स्थित हैं कभी किसी के पुत्र इत्यादि कर्म बराह इत्यादि के रूप में आते उनका वो जन्म नहीं है ऐसे नारद जी सब समय भगवान के परिकर हैं नित्य तब कभी कभी जैसे कृष्ण लीला कौतुक के लिए दूसरों की शिक्षा के लिए आते वैसे सृष्टि के प्रारंभ में कब सृष्टि के प्रारंभ में अनादि कौन सी पहली है
कभी कोई
उसमें ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए मानस पुत्र माने उससे पहले अभी मैथुनी सृष्टि नहीं थी स्त्री पुरुष के संपर्क से चाहे किसी भी जानवर ये वृक्ष मनुष्य का होता है स्त्री और पुरुष के संयोग से वो सृष्टि होती तो अभी इसकी प्रारंभिक नहीं हो अभी प्रारंभ इसका हुआ ही नहीं था उससे पहले ब्रह्मा जी मन से इच्छा की हमारी प्रजाएं हो ये जगत सृष्टि हो क्योंकि कृष्ण ने भगवान ने उनको आदेश दिया है तो उस समय में उनसे ध्यान मत बांटाओ भाई छोड़ दो उन्होंने इच्छा की कि हमको पुत्र या संतति हो मन में इच्छा की और पुत्र हुआ इसको कहते हैं मानसी सृष्टि मन के द्वारा मानसी गंगा कृष्ण ने सोचा जे ये हो लेट वर्ल्ड बी
लेट इट बी
वर्ल्ड वर्ल्ड हो गया स अकामय उन्होंने कामना की और ये सब सृष्टि हुई उसी तरह से सृष्टि के प्रारंभ में जब कृष्ण ने उनको मंत्र दिया चतुर्श्लोक और उनके अंदर में शक्ति भर दी ब्रह्मा जी के अंदर अब आप सृष्टि कर सकते हैं
महाराज मेरे फूल श्रद्धा के फूल
अरे उनको कहाँ रख दिया क्या नाम विनोद बिहारी जी को क्या हो गया काम में लग गए शादी में गए हैं तो आप नहीं तो आपके लड़के लोग कीर्तन करें हारमोनियम बजा करके या तो आप करें या वो आपका बेटा करे तो छोड़िए वो सुनिए पहले क्या कह रहा था
उन्होंने
तो काम जगत हो तो जगत कैसे हो इसलिए पहले उन्होंने मन से कुछ मानसिक सृष्टि जैसे नारद जी, मरीचि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु, अंगिरा, वशिष्ठ का नाम लिया है ना,
गौतम,
गौतम, ये सब जो हैं मन से ये उन्होंने इच्छा की और ये पर हमारे जैसा ही हो, तो वो लोग मन से उनकी स्थिति या इच्छा की और हो गए, इसलिए इनको मानस पुत्र कहते हैं। नारद, नार से ये मानसिक सृष्टि अर्थात तो उनके गले से निकल गए, गले से माने उनके गले में वेद और स्वर ब्रह्म है, इसलिए ये स्वर ब्रह्म के अवतार माने जाते हैं। नार एक तो उनके नार से निकले, नार माने गला, और गला से निकल करके, गला से निकलने का माने क्या, उनके गले में जो कुछ है कंठहार के रूप में, क्या कंठहार, सारू वेद का सार, ये सब लेकर के कृष्ण कीर्तन करते हुए वो प्रकट हुए, इसलिए नारद का स्वभाव से ही वो भक्त थे, ये पहले पहले जन्म की बात कर रहा है। और ऐसे ही गान करते हुए उनका बाल्यपन इत्यादि नहीं है, किशोर रूप में बड़े सुंदर रूप में निकल करके कीर्तन करते हुए और वो वहां से चले गए अपने काम में, बीच बीच में ब्रह्मा जी का दर्शन करते थे और सब समय सब संसार में वो कृष्ण नाम की चाली का।
और ये ब्रह्मा जी के पुत्र हुए इन्होंने जब
वो सभी
सभी के सभी
सभी
तो उन सब के लिए ब्रह्मा जी उनके गुरु तो नहीं माने जाएंगे,
अब उनसे निकले हैं उनके
पुत्र, तो
वो पुत्र हैं इसलिए सभी लोग उनको पितामह कहते हैं। ब्रह्मा जी का अभिमान है ये हमारे पुत्र हैं, उन्होंने सबको ये कहा कि तुम लोग सृष्टि करो, अभी उन्होंने तो किया था मानसिक सृष्टि, इनको कहा कि तुम कुछ मानसिक स्त्रियों को भी बनाए लाए और कहा कि तुम लोग इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। वशिष्ठ जी ने मान लिया, अत्रि जी ने भी मान लिया, अत्रि जी ने विवाह किया
अनुसूया
जी,
अनुसूया फिर मानसी
वो प्रथम मनु की कोई, पहले मनु को मनुष्य अपने मानस सृष्टि से की, उनकी कश्यप और अदिति ये जिसको उनके पुत्र जो मनु हुए ये लोग ऐसे मैथुनी सृष्टि से नहीं पैदा हुए, वही ब्रह्मा जी ने इनको भी सृष्टि कश्यप अदिति उसे कुछ लड़कियां और लड़के हुए और फिर इसके बाद में शंभु मनु हुए ब्रह्मा जी के, उनसे भी कुछ मनसी हुए, इसके बाद में ये सृष्टि जो हम लोगों की अभी चल रही है इसके लिए इन लोगों को भार दिया, इसलिए वशिष्ठ जी ने अरुंधति को और अत्रि ने नहीं वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी की पत्नी थी याद नहीं हमारा क्या नाम वशिष्ठ
जी
अरुंधति और वो अत्रि की
अनुसूया
अनुसूया और ऐसे ही ऋषियों की सब, किंतु नारद जी ने माना नहीं, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो हम तो कृष्ण का भजन करेंगे और जगत में यही शिक्षा देंगे, जब उन्होंने नहीं माना कैसे तो हमारी बात नहीं मानता तो जाओ तुम अभी गंधर्व होकर के जन्म लो और उसमें तुमको 7,000 गंधर्वियों से शादी करके शादी माने वैसे रह करके तुमको इस भोग में जाना एव मस्तु, किंतु आपका आदेश पालनीय नहीं है क्योंकि भगवत भक्ति से ये रहित करने वाला है, हम दूसरे जन्म में जाएंगे किंतु जान बूझ करके हम इस संसार चक्र में। अब वो कुछ समय के बाद में गंधर्व होकर के उनका नाम हुआ कौन गंधर्व हमारा मुझे याद नहीं आ रहा, वो गंधर्व होकर के गंधर्वियां बड़ी सुंदर, गंधर्व माने बहुत ही सुंदर जाति बहुत सुंदर और राग रागिनी के वाद्य के ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं,
गायन कला
व्यायाम कला में, नृत्य कला में, और बड़े सुंदर स्वरूप, गला मीठा आवाज, तो वो पूर्व जन्म के अभिसंपात से उनके साथ में कुछ वर्ष तक रहे। रहने के बाद में उन्होंने सोचा जैसे पूर्व जन्म का संस्कार तो भक्ति का, भक्ति के ऊपर में कोई भी अभिसंपात इत्यादि काम नहीं कर सकता, स्थूल शरीर पर काम करता है, भक्ति पर कुछ नहीं। कोई असुर हो जाने पर, वृक्ष होने पर उसकी भक्ति एकदम जैसे की तैसी रहेगी, भक्ति पर नहीं होगा। इसलिए स्थूल शरीर से तो वो हो गए, और स्थूल शरीर का जो वांट है, डिजायर, जल वर्डली सब, खाना पीना और ये सब, ये तो रहेगा, किंतु भक्ति जैसी की तैसी रहेगी, बल्कि और बढ़ी। उन्होंने सोचा कि से ब्रह्मा जी ने हमको ऐसा कर दिया, तो अब हमको क्या करना है। बाई चांस एक दिन ब्रह्मा जी का आदेश आया, हमारा यज्ञ हो रहा है पुष्कर में, तुम दलबल के साथ में, गंधर्व और गंधर्वियों के साथ में वहां पर नृत्य और गान परिवेशन करो, माने सब लोगों को चित्त मनोरंजन कर। जब समाप्त हो जाएगा तो भगवान के लीला को गुणगान गायन करके सब लोगों को चित्रण दिया। सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए, आज मौका आया, और वहां जाकर के भगवान का गुणान बात करने के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसी अश्लीलता की जिससे ब्रह्मा जी कुछ नाखुश हो गए। उन्होंने अर्धनग्न अवस्था में कुछ ऐसे पोज किए जो उनको मन अभी, उन्होंने सोचा कि इन्होंने तो यही हमको अभी संपात दिया इसी काम के लिए, और यही काम यदि कर रहा हूं तो इनको क्यों क्रोध हो रहा है। आ रहा है समझ में? हमको गंधर्व के लिए क्या, गंधर्वों का यही काम है। तो उसमें बहुत लोगों को बहुत रुचिकर हुआ, किंतु ब्रह्मा जी को खराब लगा। ब्रह्मा जी ने कहा जी अभी संपात दे जाओ, तुम शुद्ध होकर के जाओ, बस एकदम नित्य करने लगे, आनंद देने की जोर होकर अब हमको भजन कर सकते। ये इनका तीसरा जन्म है, शुद्राणी के गर्भ से जन्मी है, और उसी समय में वो भक्ति जो प्रबल कारण उनके अंदर में थी, उसके वजह से भगवान ने कृपा करके चतुर्सन को, जो कि पीछे से वो भी मानस पुत्र थे, और उनको भी उन्होंने कहा था ब्रह्मा जी तुम सांसारिक सृष्टि करो, तो उन्होंने माना नहीं, तो वो ज्ञानी थे इसलिए उनके अभिसंपात को उन्होंने ग्रहण ही नहीं किया। अभिसंपात दो प्रकार के होते हैं, किसी ने कह दिया ये जाओ तुमको ये होगा, कहे तुम्हारा अभिसंपात तुम ही को लगे, हमको नहीं लगे। वैसा यदि प्रबल होगा ना तो ऐसा हो जाएगा, या जैसे चित्रकेतु महाराज जी को पार्वती ने अभिसंपात दिया, शिव जी इस पर दंग रहे, इसने अभिसंपात दे दिया, किंतु उन्होंने कुछ नहीं, हंस करके उन्होंने ग्रहण कर, ये भक्तों का जीत है। बदले में भावना में देश नहीं है, वो जानते हैं कि भक्ति तो नित्य है, इस पर तो ये अभी संवाद का कुछ होगा नहीं असर, हम बेकार का क्यों उसको ऐसा करें। ये बड़ा चीज है ना,
भक्ति पे भरोसा।
इसलिए उन्होंने देखा जी हमारी भक्ति तो बिगड़ी नहीं, हमें तो जैसे ठीक ही चल रही है, वो अब उनका अभिसंपात श्राप वो उनकी कार करते गए, उनके लिए कुछ असुविधा। तो उसी प्रकार से वो ज्ञानी लोग थे, तेजी थे, इसलिए उसका अभिसंपात ग्रहण नहीं किया, वो किसी प्रकार से संसार में नहीं आए। वो अब भक्ति उनको, उनके ऊपर नारद जी पर कृपा करके उनको प्रेरणा दे करके वो ला रही है, या भगवान ही को लेकर के इनसे मिलन किया बचपन में। अब वो बड़े हो गए, ये छोटे हो गए नारद, उन लोगों ने आकर के एक चातुर्मास का चार महीना वहां पर रहे उस गांव में, यहाँ पर ही पैदा हुए थे। इनकी मैया भी इनको बच्चे को लेकर के गोदी में पहुंच जाती, और इसको गोदी से उतार करके, अभी छोटा सा बच्चा, वो खेलने लगता, और वो उनके जूठे बर्तनों को साफ करके, चौके को लीप पोत करके, और उनके पत्ते में जो बचा रहा था ठाकुर जी का प्रसाद, उसमें कुछ लेकर के बच्चे को बड़े प्रेम से खाता, और ये बड़े श्रद्धा के साथ में खाता। मैंने कहा जो काम बड़ी सत्संग के द्वारा लाभ होता है, वैष्णव के पद जल पीने से चरणामृत और वैष्णव के मुखारविंद से निकले हुए ये जूठा और दूसरा जूठा उनकी हरि कथा यदि उसका कोई पान करे वैष्णव पद
भक्त पद धूली
भक्त पद धूली भक्त पद जल
भक्त
ये साधन का ये बल है भक्तों की चरण धूली यदि भक्त वैसे हैं प्रबल भक्ति वाले उनके चरण बहुत जल उनकी चरण धूली और उनका उचित माने एक हरि कथा और एक दूसरी ये प्रसाद ये साधारण चीज नहीं है। ठाकुर जी के प्रसाद को कहते हैं महाप्रसाद इनके प्रसाद को कहते हैं महा महा। तो हमारा उसी से चित्त बदल गया इसी से चित्त हमारा बदल गया और मुझे अंदर में भक्ति की बहुत प्रेरणा हुई और मैं सोचा अब मुझको भी मंत्र लेना चाहिए। रोने लगे चार महीना बीत गया ऐसा चलता रहा था हरि कथा खूब सुनते ध्यान से बैठ जाता बच्चा सब लोग इधर उधर हो जाते और एक टक से एक कान से ही सुनने की कोई जरूरत भी नहीं है क्यों वो तो जिनसे कथा सुन रहे हैं उनसे भी भक्ति मार्ग में ऊंचे हैं किंतु दिखला रहे हैं ये साधकों को ऐसा होना चाहिए साधु को चित्र सब लीला कर इसके बाद में चार महीने के बाद में जब जाने लगे तो बच्चे को प्यार करने लगे तो बच्चा रोने लगे मैं कैसे आप लोगों को छोड़ सकते मैं कोई चिंता नहीं तुमको ये मंत्र दे देते हैं भगवान का इनका संग करना और इससे तुम्हारी सारी जितनी आकांक्षाएं सब तो मैंने मंत्र मंत्र देने के बाद में उसको भैया ने उनको स्नेह करके उसको सांप काट दिया कौन काटवाया भक्ति देवी ने प्रेरणा करके काल के द्वारा ये सब बनाकर उसके मैया को बतला दिया ये तो अन्याय हुआ ना तो नहीं उसके लिए भी अच्छा हुआ और वो दूसरा शूद्रानी थी वो भगवत भक्त होकर के कहीं जन्म लिया भक्तों के द्वारा उसका भी कल्याण इनका भी कल्याण तो इन्होंने माता को छोड़ करके जंगल में चले गए और कठोर साधन आरम्भ किया स्नान किया और स्नान करके एकदम उनका ध्यान तो लीला मात्र अभी ने हम लोगों जैसा नहीं प्रयास नहीं झट उनका ध्यान लग गया। कुछ दिनों के बाद में एक झलक भगवान की मिली शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए दस महीने के बाद में अंतर ध्यान हो जाने के बाद में ये विलाप करने रह नहीं सके एकदम उन्मत्त हो गए। कुछ दिनों के बाद में प्रभु ने उनको आश्वासन दिया तुम खेद मत करो दुख मत करो मैं इस शरीर से अब दर्शन नहीं दूंगा तुम्हारे अंदर में कुछ अभी अनर्थ है और ये शरीर पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार में बनता है तो ये कर्मजनित शरीर है अब इसमें इससे अधिक नहीं होता और इसमें प्रेम नहीं होता इसलिए तुम्हारे वो कर्म जो है कुछ क्षीण हो जाएंगे इसके बाद में हम तुमको सही से बदल करके नित्य सिद्ध शरीर दे करके तुमको नित्य दर्शन अब तुम अवशिष्ट जीवन कीर्तन करते हुए कृष्ण नाम का बिना पर और सर्वत्र विचरण करो समय अनुसार में काल आएगा काल के सिर के ऊपर में सर रख करके तुम हमारे पास नहीं चला तब नित्य दर्शन होगा तुम सर्वत्र घूम जाते उन्हें न्याय चाहिए अब वो शोक मोह छोड़ करके निरंतर अश्रु प्रवाहित नत्रों से रुद्ध गले से कृष्ण कीर्तन करते करते नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमण नाम राधिका रमण राधा गोविंद गोविंद दामोदर माधवि सम्मानों का ध्यान करते हुए संसार में घूमने काल आया समय आया बस उसके सिर पर पैर रख करके उन्होंने अलक्षित रूप में उस शरीर को बदल दिया और फिर मैं शरीर देकर के भगवान के पहले जिस रूप में वो थे उसी रूप में अब सर्वत्र तुम विचरण करने लगे कभी गोलोक में कभी वृंदावन में कभी नारायण लोक में कभी भूतल में कभी उस भूतल में कभी वहां और अपने हजारों रूप धारण करके हजारों कृष्ण के अवतारों की लीलाओं में उनकी सेवा करने कृष्ण कृष्ण जितना स्वरूप धारण करते हैं राम नृसिंह कल्कि बामन स्वर्ग में उपेंद्र वैकुंठ में नारायण
अलग अलग ब्रह्मांडों में
अलग अलग ब्रह्मांड में सब जगह एक एक रूप उनका होकर के उन उन सब की सेवा करने लगे
नारद जी का
नारद
सब लीलाओं के
सब लीलाओं नंद बाबा एक नहीं है यशोदा जी जितने ब्रह्मांड में लीलाएं हो रही हैं वहाँ पर एक एक कृष्ण के साथ में एक एक नंद यशोदा जी का स्वरूप है और सभी एक है
और अप्रकट में तो चल ही रहा है
वही तो अप्रकट में तो चल ही रहा है वहाँ पर सही है यहाँ पर भी है सर्वत्र है उनका ये एक तरह से कायव्यूह समझो जैसे कृष्ण का अवतार होता है विविध प्रकार से 16,000 गोपियों के साथ में 16,000 रूप धारण कर लिया और सब अपना स्वतंत्र रूप में है किसी के आश्रित कोई रूप नहीं ये एक हाथ उठाएगा तो सभी उठाएंगे
जो भी हो जैसा
जो भी लोगों का ऐसा होता है यदि 10 रूप बनाएंगे तो 10 रूप एक जो करेगा वो सभी रूप करेगा ऐसा
नहीं नारद जी का भी ऐसा नहीं और कृष्ण का भी ऐसा नहीं कोई अंतर है इन दोनों के
विचार ये जीव तत्व है और वो भगवान है ये दास है
कलयुग में जिस
तो फिर इनके
द्वापर में भी नारद जी के हुए हैं तो कलयुग में भी आते हैं